नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता सूची का मसौदा आज प्रकाशित कर दिया। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। जिन मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अगले साल 22 जनवरी तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। केरल, छत्तीसगढ़ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए मसौदा सूची आज बाद में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनकी सुनवाई का पहला चरण शनिवार से शुरू होगा। कोलकाता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत पहले चरण में लगभग 32 लाख ऐसे मतदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनके नाम सूची में दर्ज नहीं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी देशवासियों को सुरक्षा देने और देश की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आज नई दिल्ली में 38वें इंटेलिजेंस ब्यूरो शताब्दी एंडाउमेंट व्याख्यान में राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले दशक में आईबी जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने देश के आंतरिक खतरों को समाप्त किया है। राष्ट्रपति ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आईबी के असाधारण योगदान की सराहना की। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि भारत सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से संबंधित नीतियां और परियोजनाएं तैयार करने में वैश्विक स्तर पर सबसे सक्रिय देशों में से एक है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन एआई महाकुंभ को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि एआई स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शुरुआत में ही एआई के बारे में जानकारी होने से छात्रों में बेहतर सोच का विकास होगा और समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। दिल्ली की एक अदालत ने आज कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। ये मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में वर्ष 2008 के एक भूमि सौदे से जुड़े कथित धनशोधन मामले से संबंधित है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब धनशोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत चार्जशीट पर ईडी की याचिका पर अगले वर्ष 22 जनवरी को सुनवाई करेगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कई संगठनों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचारों और दीपू चंद्रदास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या किए जाने के विरोध में आज नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और क्षेत्र में 3 स्तरीय नाकेबंदी की गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की स्थिति पर निरंतर नजर बनाए हुए है। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय उच्चायोग के अधिकारी बांग्लादेश प्रशासन के संपर्क में हैं और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आग्रह किया है कि दीपू चंद्रदास की जघन्य हत्या के दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस बात पर बल दिया है कि सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने भीड़ द्वारा हिंदुओं को मारे जाने सहित हाल के हमलों पर चिंता जताई है। भारत श्रीलंका में चक्रवात देतवा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए 45 करोड़ डॉलर का पैकेज प्रदान करेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कोलंबो में मीडिया को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस पैकेज में 35 करोड़ डॉलर की रियायती ऋण लाइन और 10 करोड़ डॉलर का अनुदान शामिल है, जिसका उद्देश्य चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सहायता करना है। डॉ जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके से मुलाकात की और चक्रवात से हुए नुकसान पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र भी सौंपा। राष्ट्रीय किसान दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये दिन देश के विकास में किसानों के योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। ग्रामीण मुद्दों की गहरी समझ और किसानों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।